ओम नमस्ते जी। 223वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने विस्तृत भाष्य लिखा हुआ है। हम 14वें अध्याय अथोपासना विषय संक्षेपतः आपको सुना रहे थे। महर्षि दयानंद जी ने जिन योग सूत्रों पर भाष्य किया है, उपासकों को क्या फल होता है इस विषय में, उस पर स्वामी विद्यानंद जी अपनी बात लिख रहे हैं। प्रणव जप और उसके अर्थ की भावना रूप ईश्वर प्रणिधान से अंतरात्मा का साक्षात्कार हो जाता है और आत्म साक्षात्कार होने में जो विघ्न बाधाओं की संभावना रहती है उनका भी अभाव हो जाता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर प्रणिधान से निर्विघ्न निर्बाध आत्म साक्षात्कार हो जाता है। सूत्रगत प्रत्यक्ष चेतन पद से देह के अंदर बैठा हुआ चेतन आत्मा अभिप्रेत है। ऋषि दयानंद सहित सभी प्रायः सभी भाष्यकारों ने प्रत्यक्ष चेतन को बुद्धेः प्रतिसंवेदी लिखा है। बुद्धि यहाँ सब करणों का उपलक्षण मात्र है। करणों के सहयोग से पदार्थों को जानने वाला देह में विद्यमान चेतन जीवात्म तत्व है। बाह्य विषयों से विरक्त हुआ वह अंतःकरण यानी बुद्धि के सहयोग से समर्पण भावना से परमात्मा के चिंतन में प्रवृत्त रहता है। यह प्रत्यक्ष चेतन यानी जीवात्म पुरुष अपने साक्षात्कार के लिए ईश्वर प्रणिधान का अनुष्ठान करता हुआ और उसके द्वारा अंतरायों को दूर करता हुआ समाधि दशा को प्राप्त कर स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। प्रत्यक्ष चेतन पद जीवात्मा एवं परमात्मा दोनों का वाचक हो सकता है, परंतु वर्तमान संदर्भ में उससे जीवात्म तत्व ही अभिप्रेत है, क्योंकि पहली बात प्रत्यक्ष चेतन को यहाँ बुद्धेः प्रतिसंवेदी लिखा है। ज्ञान प्राप्ति के साधन रूप अंतःकरण की आवश्यकता जीवात्मा को ही है, परमात्मा को उसकी अपेक्षा नहीं। दूसरी बात, भाष्यकार यानी ऋषि दयानंद ने लिखा, यथेवैश्वरः पुरुषः तथा अयमपि बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः। भाष्य विवरण में इसका अर्थ करते हुए लिखते हैं, जिस प्रकार ईश्वर पुरुष उसी प्रकार यह आत्मा भी यहाँ यथा तथा और इसी प्रकार जिस प्रकार उस प्रकार शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट होता है कि यहाँ दो भिन्न तत्वों सत्ताओं का उल्लेख किया गया है, एक ईश्वर पुरुष और दूसरी बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुष। ईश्वर पुरुष से भिन्न दूसरा पुरुष जीवात्मा ही हो सकता है। यहाँ पर परमात्मा दृष्टांत रूप है और जीवात्मा दार्ष्टान्त रूप। यहाँ यह जिज्ञासा हो सकती है कि अन्य यानी ईश्वर के प्रणिधान से अन्य जीवात्मा का साक्षात्कार कैसे हो जाता है। जिसका प्रणिधान किया जाए उसी का साक्षात्कार होना संगत है, किंतु अन्य के प्रणिधान से अन्य का साक्षात्कार होना उपपन्न नहीं होता। वस्तुतः जीवात्मा और परमात्मा दोनों समान वर्गीय तत्व हैं। दोनों चेतन, अत्रिगुण, अपरिणामी, वृद्धि ह्रास आदि से रहित एवं ज्ञाता हैं। इनसे विपरीत त्रिगुणात्मक प्रकृति जड़, परिणामी, वृद्धि ह्रास आदि से युक्त एवं ज्ञेय हैं। इस प्रकार समान वर्गीय होने के कारण एक के प्रणिधान से दूसरे का साक्षात्कार हो जाता है। एक दीपक के प्रज्वलित होने पर उससे अन्य अनेक दीपक अनायास प्रज्वलित कर लिए जाते हैं। यही स्थिति ईश्वर प्रणिधान से आत्म साक्षात्कार की समझनी चाहिए। श्वेता शतुरुपनिषद में वचन आया, यदात्म तत्वे न तु ब्रह्म तत्वम दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत। जैसे रोग की स्थिति में चित्त में विक्षेप, व्यथा, बेचैनी आदि उत्पन्न होते हैं, वैसे ही योग के विभिन्न स्तरों पर स्त्यान आदि अंतराय योगानुष्ठाता के सामने आते रहते हैं और चित्त को विक्षिप्त कर योग मार्ग से विचलित कर देते हैं। इसीलिए इन विक्षेपों को योग के मल, अंतराय अथवा प्रतिपक्षी कहते हैं। इनमें से प्रत्येक की व्याख्या इस प्रकार है, व्याधि, व्याधिर धातु रसकरण वैषम्यम। धातु, रस, इंद्रियादि की विषमता को व्याधि कहते हैं। शरीर के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र इन सात धातुओं तथा वात, पित्त, कफ इन तीन प्रकार के दोषों में विषमता यानी विकार आ जाने से जो ज्वरादि रोग उत्पन्न होते हैं वे व्याधि कहते हैं। खाए पिए अन्न जलादि का परिपाक रस कहता है। नेत्र श्रोत्र आदि इंद्रियों की दुर्बलता आदि भी व्याधि में ही परिगणित है। देह तथा इंद्रियों के रोग चित्त को व्याकुल करते रहने के कारण योग प्रवृत्ति में बाधक बने रहते हैं। रुग्ण शरीर द्वारा योगाभ्यास नहीं हो सकता, अतः महाभारत शांति पर्व 274/8 में योगाभ्यासी को उपद्रवांश तथा रोगान हित जीर्ण मिताशनात्, हित जीर्ण और मित आहार के द्वारा शरीर को रोगों और उपद्रवों से दूर रखने का निर्देश किया गया है। व्याधि के नाश के लिए यह प्रकृष्ट उपाय है। अगला है स्त्यान। स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य, चित्त की अकर्मण्यता स्त्यान है। कर्तव्य ज्ञान रहने अथवा इच्छा एवं लाभ की संभावना का ज्ञान होने पर भी चंचलता के कारण अकर्मण्य बने रहने अर्थात चित्त को कार्य में प्रवृत्त न करने या रुचि न लेने को स्त्यान कहते हैं। अप्रीतिकर होने पर भी प्रयत्न करते रहने से स्त्यान हट जाता है। तीसरी बात आती है संशय की। संशय उभय कोटि स्प्रिग विज्ञानम संशय, उभय दिक् स्पर्शी विज्ञान संशय कहता है। यह ऐसा है या ऐसा नहीं है, इस प्रकार जिस पदार्थ का निश्चय करना चाहें उसका निश्चय न कर पाना संशय कहता है। योगानुष्ठान व उसके फल के विषय में संदिग्ध रहना, यह अनिश्चितता या दोलायमान स्थिति योगानुष्ठान में बाधक है। अत्यंत दृढ़ता तथा वीर्यपूर्ण प्रयत्न के बिना योग की सिद्धि संभव नहीं। संशय के रहते ऐसा प्रयत्न संभव नहीं। श्रवण और मनन तथा आप्त पुरुषों के सहवास से संशय दूर होता है। चौथी बात आती है प्रमाद की। प्रमाद समाधि साधना नाम अभाव, समाधि के साधनों में भावना का अभाव प्रमाद कहलाता है। जानते हुए भी समाधि के साधन योगांगों का ग्रहण में प्रीति न करने तथा उनके अनुष्ठान में उपेक्षा करने को प्रमाद कहते हैं। प्रमाद का प्रतिपक्ष स्मृति है। मुंडकोपनिषद 3:2:2 में कहा है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिंगात्। प्रमादी को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। महात्मा बुद्ध ने भी धम्मपद अप्रमाद वर्ग में कहा है, अप्रमाद अमृत पद और प्रमाद मृत्यु पद है। आगे पांचवी बात आती है आलस्य की। आलस्य काय चित्तयोर गुरुत्वाद अप्रवृत्तिर आलस्यम, शरीर और चित्त की गुरुतावश अप्रवृत्ति आलस्य है। अनुष्ठान में रुचि और सामर्थ्य होने पर भी देहादि की क्रिया द्वारा उसमें संलग्न न होना अथवा मनोयोग पूर्वक उसमें प्रवृत्ति न होना आलस्य कहता है। कफ आदि दोषों से देह का भारीपन तथा तमोगुण के प्राधान्य से चित्त का भारीपन ध्यान में बाधक बनते हैं। स्त्यान में चित्त अवश होकर इधर उधर घूमता है, अतएव साधन कार्य में उसका प्रयोग नहीं हो पाता। चैतिक आलस्य में चित्त तमोगुण के प्राबल्य से स्तब्धवत रहता है। यही दोनों में भेद है। मिताहार तथा उद्योग से आलस्य पराभूत होता है। आगे छठी बात आती है अविरति। अविरतिश्चित्तस्य विषय संप्रयोगात्मा गर्धः, विषय सेवन में तृष्णा का होना अविरति है। सांसारिक विषयों की ओर से निवृत्ति का न होना अर्थात रूप रस आदि विषयों में तृष्णा का अनवरत बने रहना अविरति कहती है। इससे योग साधना में प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है। कामम संकल्प वर्जनात्, महाभारत शांति पर्व 274/5, वैषयिक संकल्प को त्यागने का आभास करने से अविरति नष्ट हो जाती है। आगे अगला विषय आ रहा है विपर्यय ज्ञान, जिसकी चर्चा हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। इसको यहीं विराम देते हैं।